गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं विनीता शुक्ला की लिखी कहानी एक थोपा हुआ संग्राम। योगिता विस्मित थी। शादी के बाद औपचारिकताओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। विवाह के नाम पर रिसेप्शन पति के दोस्तों ने पहले ही रखा था। फिर हुआ एक गेट टुगेदर नवविवाहित युगल की तरफ से। ऑफिस के सहकर्मी परिवार सहित पधारे एक दूसरे के आयोजन में। यहाँ तक तो ठीक था, पर सबसे ज्यादा असहज वह क्लब के फंक्शन में हुई, क्योंकि उसके पति ऋषभ का सपाट निर्देश था, आज तुम्हारा मेकअप ऐसा होना चाहिए कि तुम ही सबसे सुंदर लगो। बात तो उसे कुछ जमी नहीं, उसकी सुंदरता पर ही तो रीच कर ऋषभ ने उसे पसंद किया था। सगाई के बाद जब वे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते, ऋषभ पंकज उदास की एक खास गजल बार बार रीप्ले करता। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। तब योगिता खूब समझती थी कि वह गाना उसी के लिए बजाया जा रहा है। वो दीवानापन कहीं एक खूबसूरत भ्रम तो नहीं था, स्यूडो कल्चर की चमक में धुंधला रहा हो। जो जलसे के दौरान बॉस की पत्नी से परिचय हुआ, ऋषभ बोला, मीट माई वाइफ मैम, यू नो शी इज़ अ ग्रेट कुक, कभी हमारे घर आइए खाने पर। वैसे थोड़ा बहुत गा भी लेती हैं ये, पर सबके सामने गाने में थोड़ा शाई फील करती हैं। सब कुछ फटाफट बता दिया था ऋषभ ने। ओह, मिसेस बॉस चहक कर बोली, लेडीज़ मीट में शी कैन गिव अस सम कुकिंग टिप्स और समटाइम्स कुकिंग डेमो एज वेल, यू नो अगर वो चाहे तो हमारे कोरस सॉन्ग में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। यू सी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए वी आर प्रिपेयरिंग अ ग्रुप सॉन्ग। श्योर मैम, जवाब में उसके पतिदेव बोले गर्व से फूलते हुए। सुनकर खीज हो आई थी योगिता को। ऋषभ तो माँ की टोन में बोल रहे थे, ऐसे ही माँ भी लड़के वालों के सामने उसे किसी बिकाऊ सामान की तरह पेश करती थी। लेकिन शादी के बाद क्यों फिर से वही ऋषभ ही क्यों? क्लब में तीन बंदे थे जिनकी नई शादी हुई थी, वे भी अपनी बीवी का बढ़ चढ़ के महिमा मंडन करने में लगे हुए थे। जो भी हो, इन चारों न्यूली वेडेड कपल का वहाँ मौजूद भीड़ से परिचय कराया गया। क्लब की तरफ से उन्हें बुके मिला। बेस्ट विशेस के साथ स्टेज पर मौजूद उन जोड़ों को देखकर लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। विनोद की बीवी गोरी जरूर है पर थोड़ी मोटी है, और सुबोध वाली सांवली लग रही है, लेकिन सुना है दहेज बहुत लाई है। अरे सबसे ज्यादा स्मार्ट तो वो रंजन वाली है, पर स्टाइल कुछ ज्यादा नहीं मार रही। मैं तो कहूं हूं सबसे प्यारी ऋषभ की घरवाली लग रही है। प्यारी, माय फुट, मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं है। नहीं नहीं, शर्माती होगी, धीरे धीरे खुलेगी हम सबसे। लेकिन इस बात से ज्यादातर महिलाएं असहमत थीं। योगिता का कम बोलना उन्हें अखड़ जरूर रहा था। यहाँ तो वैसी ही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उन्हें कौन समझाता, अरे देवियों जाओ पहले अपना घर बार देखो, दूसरे के मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो। पर महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी उत्सुकता से उन नई लड़कियों पर आंखें गड़ाए थे। शादीशुदा आदमी ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो जो होना था सो हो गया, अब कमेंट करके क्या फ़ायदा वाली बात थी। पर कुमारे ज़रूर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए रास्ता अभी खुला था। विनोद, सुबोध, रंजन और ऋषभ के बीच अनजाने में ही मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफ़ेद कैसी वाली तर्ज पर मेरी वाली तेरी वाली से टाइप की होड़ लग गई थी। ये नए ज़माने के लड़के भी अजीब होते हैं। बीवी ना हो गई बाइक हो मानो, जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई थी। बात यहीं खत्म हो जाती तो कोई बात न थी, पर ये चारों नवयुवक जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, एक अलग ही श्रेणी में आ गए, या यूं कहें अपना एक अलग वर्ग बना लिया था उन्होंने, और उनकी पत्नियां भी चाहे अनचाहे उस वर्ग की सदस्य हो गई थी। इसके चलते उनमें इंटरेक्शन, साथ साथ उठना बैठना और आउटिंग अक्सर होते। कॉरपोरेट समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ऑफिस के सहकर्मी ऑफिस द्वारा दी गई आवासीय सुविधा के तहत एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो क्या कार्यालय के भीतर चलने वाली प्रतिद्वंदिता उनके पारिवारिक जीवन में भी मुखर नहीं होती? शायद हाँ। और इस आग को बराबर हवा देती परिसर की अंधेड़ महिलाएं योगिता से मिलने के बहाने आती और उसे कुरेदने के लिए कुछ न कुछ बक जाती। अरे वो रंजन की बीवी है ना, वो संगीता क्या बढ़िया पॉप डांस करती है, तुमने भी कुछ स्टेप्स तो सीखे होंगे, क्यों ना एक डांस पार्टी करें। फिर कोई कहता, क्या नाम है मिसेस सुबोध का, हाँ वंदना, पता है जब मैंने तुम्हारी कुकिंग स्किल्स के बारे में बताया तो बोली, हम तो मैडम अपने घर में कुछ काम नहीं करते थे, 10 ठो नौकर जो थे, इस कुकिंग शुकिंग के चक्कर में कौन पड़ता है, लो बताओ गृहस्थी बसाने आई हैं और खाना पकाना तक आता नहीं। मिसेस विनोद उर्फ मालविका अपने घर को कैसे सजा कर रखती है वह भी इन औरतों की बदौलत ही जान पाई थी योगिता। उसके पति के अविवाहित दोस्त भी कुछ कम न थे, इधर की बात उधर करते रहते थे, भाभी भाभी करते हुए आते और चाय नाश्ते के दौरान संगीता वंदना और मालविका की चर्चा करते रहते। एक अजीब सा दबाव था इन नई घरातिनों पर, पतिदेव के समक्ष खुद को औरों से बेहतर साबित करने का दबाव। घुटन सी होने लगी, मानो किसी अघोषित युद्ध में जबरन घसीट कर ले आया गया हो। इसी क्रम में आती थी मालविका की लो नेक वाली स्ट्रिप्ड ड्रेसें, जो उसकी चर्बी को काफी हद तक छुपा लेती थी। वंदना के स्लीवलेस ब्लाउज, जो लोगों का ध्यान उसकी सांवली रंगत और साधारण नाक नक्श से हटाकर उसकी छरहरी देह की तरफ खींच लेते थे। रह गई वह और संगीता, जो देखने सुनने में ठीक थी, फिर भी उस महाभारत में प्रतिभागी बनी हुई थी। जब कभी ऋषभ दबी जबान से विनोद, सुबोध या रंजन की बीवियों की तारीफ करता तो योगिता कुलबुला उठती। इसलिए नहीं कि वह उनसे जलती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पति के लहजे में उसे जलने की बू आने लगी थी। वह तो अपने आप को खुशनसीब मानती थी कि उन दोनों ने एक दूसरे को ठीक से जान समझ कर अपनाया था, सारे गुण दोषों के साथ। उसे सपने भी नहीं सोचा था कि अरेंज मैरिज की तरह उनकी लव मैरिज को भी ऐसे इम्तहान से गुजरना होगा, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, जिसमें वे एक दूसरे को पूरी तरह से काबू में ले आना चाहते हैं, जिसमें वे जताना चाहते हैं कि अपने साथी के लिए वे ही सबसे अधिक सुयोग्य हैं। विवाह के शुरुआती वर्षों में जब दैहिक आकर्षण चरम पे होता है, जीवन साथी साथ साथ बंधा रहता है कमर में घुसे चाबी के गुच्छे की तरह। पर इन सुनहरे दिनों में पति का ध्यान पराई औरतों की ओर जाना कुछ ठीक नहीं लगता योगिता को। क्यों सदा स्त्री को ही खुद को साबित करना पड़ता है, क्यों सदा उसे ही पुरुषों को रिझाने के जतन करने पड़ते हैं। वह भी चाहे तो पति में 1000 खोट निकाल सकती है, परंतु उसके हिस्से में तो साध्वी जैसी प्रतिबद्धता ही आती है। समाज का यह दोगलापन कहीं गहरे कचोटता है, आहत करता है। योगिता का मन विद्रोह कर उठा। उस द्रोह को उद्वेलित करने लगी मालविका की लो नेक वाली स्ट्रिप्ड ड्रेसेस, वंदना के स्लीवलेस ब्लाउजेस, संगीता के व्यवहार में उतर आई बनावट और खुद उसके मन की हलचलें। उसे याद आया कि जब छोले जल जाते थे तो माँ बड़ी सहजता से पापा को बता देती थी कि वो छोले तो मिसेज अग्रवाल ने भेजे थे, और फिर क्या, पापा बिना किसी हील हुज्जत के उन्हें चट कर जाते थे, बल्कि तारीफ भी करते थे, कहते थे बढ़िया बने हैं। वाहरी पुरुष जाति जिसे पराई पत्तल का भात हमेशा ही बड़ा दिखाई देता है। योगिता ने मन ही मन कुछ सोचा और एक रणनीति तैयार की। उस रणनीति के तहत वह घर का काम निपटाकर अपनी समवयस्का सहेलियों से मिलने चल दी। ये सहेलियां कोई और नहीं थी, उसके साथ रेस का घोड़ा बनी हुई संगीता, मालविका और वंदना थी। बार बार मिलने से वे लोग आपस में खुलने लगी, परस्पर सुख दुख का आदान प्रदान हुआ और संवेदनाओं के सूत्र स्वतः ही जुड़ गए। परंतु उनके पतियों को इस मेल मिलाप की खबर नहीं थी, क्योंकि यह सब तब होता जब वे लोग अपने काम धंधे में लगे होते। योगिता ने प्रयास करके अपनी इन सखियों को परस्पर मैत्री की प्रेरणा दी। उसका प्रयास फलीभूत हुआ। चारों युवतियों के बीच दुर्भाव छटने लगा था धीरे धीरे, और उसके स्थान पर नई दोस्ती के अंकुर फूटने लगे थे। इससे एक लाभ ये हुआ कि पराई स्त्री को ढाल बनाकर उनके पति जो उन पर तीर छोड़ते थे, वो उन्हें अब उतना नहीं कचोटते थे। फिर किसी दिन मालविका ने एक झकझोर देने वाला रहस्योद्घाटन किया। उसने उनके पतियों को आउट हाउस में बतियाते सुना था। सुबोध कह रहा था, भाई मजा आ गया, जब से मैंने योगिता भाभी के लुक्स की तारीफ की है, वंदना का तो बहुत समय सजने संवरने में ही बीतता है। तो दूसरा बोला, और मालविका से जब से संगीता भाभी की डांसिंग स्किल के बारे में बताया है, वो डांस सीखने की जिद करने लगी है। अच्छा ही है, स्लिम हो जाएगी। इन औरतों को जलाने तड़पाने का एक दूसरा ही मजा है। इसके साथ प्यार की खुमारी बढ़ती ही चली जाती है। इस बार ऋषभ बोला था, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, औरतें तो वैसे ही जलकुकड़ी होती हैं और इसी से जल्दी झांसे में भी आ जाती हैं। रंजन का कहना था, तो स्पर्धा अब एन्जॉयमेंट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अहम का टकराव अब रूप बदलकर कुछ और ही हो गया था। ये पुरुष अपनी शिक्षित पत्नियों को भी जहालत में धकेल रहे थे, उन्हें मोहरा बनाकर खेल खेल रहे थे। उनके वजूद को कठपुतली बनाने की जुगत में किसी तानाशाह की तरह हावी होने के लिए तुरंत फुरत सब सखियों ने मिलकर पतियों को सबक सिखाने की योजना बना डाली। जब ऋषभ ऑफिस से लौटता, तब योगिता की कोई ना कोई सहेली अक्सर बैठी हुई मिलती, कभी वंदना, कभी मालविका, तो कभी संगीता। उसे देखते ही योगिता कोई ना कोई जुमला उस पर उछाल देती। सुनो वंदना, कल ढेर सारी शॉपिंग करके लाई है, मुझे भी शॉपिंग पर ले चलो ना, सुबोध भाई की तरह। मालविका के साथ विनोद भाई ने बहुत मेहनत करवाई है घर को सेट करने में, और एक तुम हो कि कुछ करते ही नहीं। या फिर मुझे संगीता की तरह वो मेले वाला एंटीक पीस चाहिए, चलिए ना आज ही चल के लेके आते हैं। यही नहीं, वे लोग पतियों को मेस में खाने की ताकीद करके साथ घूमने निकल जाती और देर तक लौटती। धीरे धीरे ऋषभ इन सब से आजिज आ गया था। एक दिन कह उठा, क्या बात है यार, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ। यह सब किस लिए की है दोस्ती तुम्हारे फ्रेंड्स की बीवियों से? इसीलिए तो कि उनसे वो सब कुछ सीख सकूँ जो मुझे नहीं आता और जिसकी वजह से तुम्हें कॉम्प्लेक्स होता है। ऋषभ बोला, क्या मतलब? मतलब मालविका से इंटीरियर डेकोरेशन और संगीता से गेटअप सुधारने की टिप्स ले रही हूँ, और वंदना के साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस भी। यू नो इट्स ग्रेट। व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस? ऋषभ ने चिढ़कर कहा, दे डोंट नो एनीथिंग, क्या खाक सिखाएंगी तुम्हें? पर तुम तो उन्हीं की तारीफ। आई वॉज क्रेजी टू हैव सेड दोज ऑल दीज थिंग्स, बट यू नो इट हर्ट्स। योगिता ने मौका नहीं चूका था, और तब ऋषभ को हथियार डालने ही पड़े। वह थोड़ी देर को चुप लगा गया, फिर सोचकर बोला, ठीक है मेरी माँ, अब कभी उनकी चर्चा नहीं करूँगा, पर तुम भी इस तरह टाइम वेस्ट करना बंद करो। एज यू विश, योगिता ने कंधे उचका दिए थे। मन ही मन हंसते हुए सोच रही थी, चलो छुट्टी मिली इस रोज रोज की कचकच से। अभी आपने सुनी विनीता शुक्ल की लिखी कहानी एक थोपा हुआ संग्राम। गाथा पर इसे आपके लिए प्रस्तुत किया था पूजा श्रीवास्तव ने।